لیے ہیں. نمبر 2 دسمبر 1993 کے مدعے ہیں. اپنے کو راج رشی سمجھتے ہو, راج بھی اور رشی بھی, سوراجیہ ملا تو راجہ بھی ہو, اور ساتھ ساتھ پرانی دنیا کا گیان ملا تو پرانی دنیا سے بے حد کے ویراگی بھی ہو, اس لیے رشی بھی ہو. ایک طرف راجیہ, دوسرے طرف رشی, ارتھات بے حد کے ویراگی, تو دونوں ہی ہو. بابا پوچھتے ہیں بے حد کا ویراگیہ ہے یا تھوڑا تھوڑا لگاؤ ہے. اگر کہاں بھی چاہے اپنے میں, چاہے ویکتی میں, چاہے وستو میں, کہاں بھی لگاؤ ہے تو راج رشی نہیں, نہ راجہ ہے نہ رشی ہے. کیونکہ سوراج ہے تو من بدھی سنسکار سب اپنے وش میں ہے, تو لگاؤ ہو نہیں سکتا. اگر کہاں بھی سنکلپ ماتر تھوڑا بھی لگاؤ ہے تو راج رشی نہیں کہیں گے. اگر لگاؤ ہے تو دو ناؤ میں پاؤں ہوا نہ. تھوڑا پرانی دنیا میں, تھوڑا نئی دنیا میں, اسی لیے ایک باپ دوسرا نہ کوئی. کیونکہ دو ناؤ میں پاؤں رکھنے والے کیا ہوتے ہیں؟
ایک مرلی میں سچیر پڑتے
ہیں. نہ یہاں کے نہ وہاں کے, کہیں کے نہیں. اس لیے راج رشی راجہ بنو اور بے حد کے ویراگی بھی بنو. تو جو بابا نے کہا یہاں پر کہ سوراج ملا تو راجہ بھی ہو, ساتھ ساتھ پرانی دنیا کا گیان ملا تو پرانی دنیا سے بے حد کے ویراگی بھی ہو, تو صرف اس لیے ویراگی نہیں کہ پرانی دنیا کا گیان ملا, لیکن اسی لیے بھی ویراگی کیونکہ نئی دنیا کا گیان ملا. اور ساتھ ساتھ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک بات دھیان آئی کہ ابھی ایک مہینہ پہلے ہی ایک سیمینار کا چانس ملا تھا, تو اس میں ایک ویڈیو ہم نے دکھائی تھی. اس ویڈیو میں جو نیٹو امریکنز ہوتے ہیں, مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں امریکہ میں, تو کہا جاتا ہے کہ ان کا جو گیان ہے وہ بہت ڈیپ ہے اور بہت کہتے بہت ان میں بہت وزڈم ہے اور بہت وویک ہے اور یہ سب باتیں. تو جب وہ میں نے ویڈیو دیکھا پہلے, میں نے میری لائف اس سے بہت چینج ہوئی ایکچولی. اور 10 منٹ کا وہ ویڈیو تھا, تو اس میں بہت سارے اس نے باتیں بتائی آج کی لائف میں ایسا ہے ویسا ہے, یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. لیکن جیسے اس نے ایک سار میں ایک بات بولی کہ ہم سبھی ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہیں, مطلب سبھی سارا سنسار جیسے کہ گھوڑے پر سوار ہے اور بہت تیز وہ گھوڑا دوڑ رہا ہے, اور لیکن سامنے ایک بہت بڑی دیوار ہے, کیا بولتے ہیں, پتھر کی دیوار ہے, اور ہم نا بہت تیز گھوڑے کو دوڑاتے جا رہے ہیں, کھینچ نہیں رہے ہیں اس کو, مطلب اس کے لگام کو کھینچ نہیں رہے ہیں. تو جب میں نے یہ ویڈیو دکھایا کلاس میں تو سب سے جیسے پوچھا کہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے سن کے دیکھ کے, تو 2 منٹ تو سبھی چپ رہے, پھر بعد میں کہتے ہیں بہت اچھا, ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, ہم نے ایسے تو سنسار کی حالت کر دی ہے. تو بھائی بابا کہتے ہیں کہ گیان ملا ہے تو ویراگ بھی آتا ہے. اور جہاں بابا نے لگاؤ کی بات کی کہ اگر تھوڑا تھوڑا لگاؤ ہے, اگر کہاں بھی تھوڑا لگاؤ ہے, تو جب بھی لگاؤ کی بات آتی ہے نا تو مجھے ہمیشہ ایک سین سامنے آتا ہے, لگاؤ مطلب اٹیچمنٹس, جیسے آتما ہے یہاں پہ, لیکن جہاں جہاں لگاؤ ہے, ویکتی ہے, ویبھو ہے, یا جو بھی چیزیں ہیں, تو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ آتما کی جو ارجا ہے نا وہ بہ رہی ہے اس ان کی طرف, کھینچ رہی ہے, مطلب کم ہوتی ہے, آتما کی جو بیٹری وہ ڈسچارج ہوتی رہتی ہے لگاتار. تو بھائی بابا کہتے ہیں اگر لگاؤ ہے, جھکاؤ ہے, اور اپنے وش میں من بدھی سنسکار نہیں ہے تو بے حد کے ویراگی نہیں, تو دو ناؤ میں پاؤں ہوا, تھوڑا پرانی دنیا میں, تھوڑا نئی دنیا میں, اسی لیے ایک باپ دوسرا نہ کوئی, تو نہ یہاں کے نہ وہاں کے رہیں گے. اسی لیے راج رشی راجہ بنو اور بے حد کے ویراگی بھی بنو. ابھی دوسری مرلی ہے یہ 5 دسمبر 1994 کی. यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है। चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। लेकिन होता क्या है, बैलेंस तो रहे, न्यारा और प्यारा का बैलेंस रहे, लेकिन होता क्या है, पहले प्यारा फिर न्यारा। और कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती, कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो बाबा ने बहुत अच्छी परिभाषा बताई कि प्यारापन का अर्थ है, मुझे भी दो तीन बार पढ़ना पड़ा इस लाइन को कि क्या है इसका अर्थ एक्चुअली, कि न्यारापन और प्यारापन का बैलेंस चाहिए। फिर बाबा ने कहा प्यारापन का अर्थ है, क्या अर्थ है प्यारापन का, न्यारा होना। और प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, यही है प्यारापन का अर्थ। लेकिन इसके बदले निमित्त भाव नहीं रहता तो क्या आ जाता है, मेरेपन का भान आ जाता है कि ये मेरा है। जैसे कहते हैं ये मेरा मेरा मैं तो जैसे कि रग रग में बसा हुआ है, तो ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं, इतनी मेहनत से मैंने ये साधन स्थान व सेवा व सेवा साथी स्टूडेंट्स बनाए हैं, ये मेरा है, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है। ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है, हर चीज में मेरा मेरा, जैसे हर चीज, जैसे कहते ना कि संसार में सबसे प्यारा एक शब्द होता है जो हर एक के लिए बहुत प्यारा है, जो हर एक को बहुत अच्छा लगता है, वो क्या है, मैं, दूसरे शब्दों में मेरा, तीसरे शब्दों में अपना नाम, सबको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दुनिया में जो ट्रेनिंग करवाते हैं ना, उसमें कहते हैं कि आपको ना सबका नाम याद रखना चाहिए हमेशा, सबको बहुत अच्छा लगता है। जैसे क्लास में अगर कोई 50 लोग आए, आपको 50 के 50 का नाम याद है और आप नाम के साथ संबोधित करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह इनको पता है मेरा नाम, तो मेरा है ना, सबसे अच्छा लगता है। तो ये एक छोटी बात हुई, लेकिन इसके अलावा भी जैसे जब ये मेरा मेरा मैं की बात हो रही थी तो मुझे दो लोगों की याद आई। आपने शायद वजीहा बहन का नाम सुना होगा, हाँ वजीहा, हाँ जी, तो जिन्होंने सेवा शुरू की थी वहां पे कुवैत में, तो जैसे उसके साथ ज्यादा रहने का मौका नहीं मिला, एक साल मैं उसके साथ रही, तो 6 महीने उस समय बीमार थी, वो लंदन चली गई थी, तो उसको मैंने देखा कि जो मैं मेरा मेरा जो होता है ना, बिल्कुल अटैच। जैसे उससे किसी ने मांगी, एक गाड़ी मांगी कि बहन वो कार चाहिए, ऐसे ऐसे कार नहीं मिल रही है, तो उसने कहा बाबा की कार ले जाओ ना, तो बाबा की कार मतलब हम सोचेंगे कि जो सेंटर की कार है वो बाबा की कार है, तो उसने कभी नहीं कहा कि मेरी कार, कहते बाबस कार, टेक बाबस कार। फिर उसके बाद एक दूसरा भाई अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे आया था, एमन, तो वो तो हमेशा ही जैसे फोन रखा था, कहते वो बाबस फोन इज देयर, वो बाबा का फोन रखा है वहां पे। मैंने कहा कौन सा बाबा का फोन, कहते वही वहां पे रखा जो, तो कहते बाबस बॉडी, बाबा की बॉडी है, तो हर पल बाबा का, बाबा का। तो वहां पे ज्यादा लोग निकलते नहीं है ज्ञान में, जो निकलते हैं पर वो ऐसे वाले निकलते हैं जो एकदम बस स्पीड से जाते हैं, बिल्कुल पक्के, बिल्कुल ऐसे धारणाओं के बिल्कुल पक्के। और फिर मैं की बात आई तो मुझे एक बात और भी ध्यान आई कि एक बार मैं हमारे दीदी के साथ रमेश भाई साहब से मिलने गई, किसी कागज का कुछ काम से, पता नहीं क्या, मुझे मैं समझ से बाहर था मेरा, कुछ साइंस करवाने, साइन वगैरह करवाने थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारा जो सेंटर है ना, तो भाई साहब ने कहा क्या, एक मिनट रुको, क्या कहा, हमारा सेंटर, रुको। तो थोड़ा 10-20 मिनट उनकी क्लास हुई और उसके बाद फिर कहा अच्छा अब बताओ क्या काम है, हाँ ये हमारा और मेरा और तो सच में वैसे तो कहने में तो यही आता है, लेकिन अंदर से ایٹ لیسٹ بابا کے بچوں کے ساتھ شاید ہم بابا کے کا یوز کر سکتے ہیں شبد کا, اوروں کے ساتھ تو لوگ کہیں گے کیا ہو گیا ان کو, لیکن آف کورس. تو بابا کہتے ہیں کہ لیکن اس کے بدلے میرے پن کا بھان آ جاتا ہے, یہ میرا ہی کام ہے, میرا ہی ستھان ہے, مجھے ہی سرو سادھن بھاگیہ انوسار ملے ہوئے ہیں, اتنی محنت سے میں نے یہ سادھن ستھان وسیوا وسیوا ساتھی اسٹوڈینٹس بنائے ہیں, یہ میرا ہے, کیا میری محنت کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ یہ نمت بھاو اور میرے پن کے بھاو میں انتر ہے یا ایک ہی ہے؟ تو یہ میرا پن رویل روپ سے بڑھ گیا ہے, یہ میرے پن کی رویل بھاشا, رویل سنکلپ, باپ سے روح ریحان میں بھی باپ دادا بہت سنتے ہیں, بہت پیار سے باپ کو یا نمت آتماؤں کو منانے یا منوانے آتے ہیں. بابا آپ ہی اس میں میرے کو مدد کرنا, آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ میرا کام نہیں ہے؟ بابا کو ہی تھوڑا سمجھاتے رہتے ہیں, میری ذمہ داری نہیں ہے, میرا ادھیکار میرے کو ہی ملنا چاہیے, میرا ادھیکار. باپ کو بھی کیا کرتے ہیں, باپ کو بھی گیان دینے کے لیے بہت ہوشیاری کرتے ہیں, جیسے بابا کئی بار کہتے ہیں نا چتر سجان کے ساتھ ہی چترائی کرتے رہتے ہیں, اور پھر بابا کہتے ہیں کہ جب جہاں میرا ہے میرا میرا پن آ جاتا ہے وہاں بدھی کا پھیرا, بدھی کا پھیرا ہو جاتا ہے. ہاں دیکھو کتنے اچھے ہیں ہمیں گیان یاد ہے, تو بابا کو تھوڑا پٹاتے رہتے ہیں. تو بابا کو یہ سیون ڈیز کورس, تو باپ کو بھی گیان دینے کے لیے بہت ہوشیاری کرتے ہیں, اور باپ دادا پھر کیا کرتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, ایک ہی کام ہے بابا, مسکراتے رہتے ہیں. نمت ہیں جو ملا جیسے ملا, جہاں بٹھائیں گے جو کھلائیں گے جو کرائیں گے وہی کریں گے. تو ایک بار 15 سال پہلے شاید جب ایک بہن کو وہ لکھ رہی تھی یہ سب, جہاں بٹھائیں گے اور جہاں کھلائیں گے اور جو بھی کھلائیں گے, تو پھر آگے کہتی ہے اور جو لکھائیں گے وہی لکھ دیں گے. تو جو کرائیں گے وہی کریں گے, یہ پہلا پہلا سبھی کا وعدہ ہے, وعدہ ہے نا, یہ وعدہ ہے یا صرف کھانے پینے کے لیے ہے؟ میرے پن کے بھاو کا ویراگیہ ہی کیا ہے, یہ بے حد کا ویراگیہ ہے, میرے پن کے بھاو کا ویراگیہ ہی بے حد کا ویراگیہ ہے, نئے نئے پرکار کے میرے پن اور ایمرج ہو رہے ہیں, مایا ورتمان سمے نئے نئے پرکار کے میرے پن کی چھایا ڈال رہی ہے, اسی لیے سمے کی سمیپتا پرتیکش روپ میں نہیں آ رہی ہے. جانی چاہے اجانی دونوں جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ دنیا کی حالتیں بہت خراب ہیں, یہ دنیا اب کہاں تک چلے گی, کیسے چلے گی, لیکن پھر بھی دنیا چل رہی ہے. سمے کی سمیپتا کا فاؤنڈیشن ہے بے حد کی ویراگیہ ورتی. باپ دادا نے چیک کیا, بے حد کی ویراگیہ ورتی کے بجائے نئے نئے پرکار کے چھوٹے چھوٹے لگاو کا وستار بہت بڑا ہے, اس وستار نے سار کو چھپا لیا ہے. سمجھا اب کیا کرنا ہے؟ تو بابا نے یہاں پہ کہا کہ سبھی لوگ ابھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا کی حالتیں بہت خراب ہیں, دنیا کہاں تک چلے گی, کیسے چلے گی. تو جو ہمارے یہاں پہ لوگ آتے ہیں نا, تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں, زیادہ تر ایسے ہیں جو صرف کانٹیکٹ سولز ہوتی ہیں, تو جو گیان میں جو پکے چلتے ہیں اور کویتی لوگ ہیں, تو ان کو وہ لوگ ہمیشہ بولتے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ سیف نہیں ہے, مطلب دبی زبان میں بولتے ہیں, کھلے سے نہیں بولتے, کہتے ہیں لگتا ہے ابھی سیف نہیں ہے, اور ابھی تک لگتا تھا کہ یہ دیش تو سیف ہے, پر اب جب سے بم بلاسٹ یہ سب ہوا تو ان کو لگتا ہے بالکل سیف نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ ہمیں نا بھارت میں جانا ہے, ہمیں انڈیا میں تھوڑا انویسٹ کرواؤ, ایسا لگتا ہے وہیں پر ہے تھوڑا سیف. ویسے تو بہت ہنسی اڑاتے ہیں انڈینس کی, بٹ بہت ہنسی اڑاتے ہیں, بتاؤں گی کیوں. اور बहुत सारी बातों की छोटी-छोटी कई बार, तो वो तो खैर एक अलग टॉपिक है जिसके लिए बहुत स्ट्रगल किया मैंने। लेकिन जो बताया कि कहते नहीं भारत में हमें इन्वेस्ट करना है, वहीं पर शायद सेफ्टी है, वहीं पर शायद कुछ मिलने वाला है, इस तरह से आध्यात्मिक नहीं बट उनको थोड़ा सेफ्टी सी लगती है। और फिर कुछ समय ऐसे ऐसी न्यूज अभी आ रही थी कि जैसे इतनी इनसिक्योरिटी और भय है कि जैसे एक न्यूज आई और उसकी वीडियो भी पूरे कुवैत में रिलीज हुई कि किसी का घर जैसे इससे डबल घर होगा और पूरी जो फर्श है उसको उन्होंने उसकी टाइलें हटाई तो नीचे पूरी बंदूकें और वो सब थी, तो उन्होंने अपने आप को सेफ करने के लिए क्या पता क्या हो जाए तो बस ऐसे करके अपने आप को। और साथ साथ अभी हम योग भी करते थे इस बारे में, आपने सुना होगा जो सीरिया वगैरह का सब चल रहा है। लेकिन सबसे बड़े दुख की जो बात है वो कि जो लोग मर रहे हैं वो तो है ही 3 साल से 4 साल से, लेकिन कुछ माइग्रेंट्स हैं अभी जो माइग्रेट हो रहे हैं जो उस देश से, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया, लेबनान से भी बहुत सारे लोग यूरोप के देशों में जा रहे हैं जैसे जर्मनी और इस तरफ। तो जो लोग जा रहे हैं ना तो कई लोग तो बहुत हजारों लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, निकल तो पड़े घर से बस एक छोटा सा बैग लेके, कितना लेके ढो सकते हैं। तो रास्ते में ही कितनी न्यूज आती है, 2 दिन पहले भी था कि उनकी बोट जो है वो डूब जाती है, मतलब बेचारे जिंदगी के लिए गए थे लेकिन बीच में जल्दी ही। और फिर उसके बाद जैसे ही यूरोप में एंटर करते हैं उन देशों में तो बहुत सर्दी होती है, सर्दी से मरते हैं, भूख से मरते हैं। तो इस तरह से जो हालत है, तो योग में हम सभी ने उनको हमेशा ही इमर्ज करते थे। जैसे कई बार तो ऐसा लगता था कि बस अभी योग तो लग नहीं रहा, बस रोना ही आ रहा है उनको सोच सोच के कि क्या हालतें हैं। और फिर कई बार बाबा की वो बात याद आती थी कि आप सभी ही इसका कारण हो, हम कारण है, मतलब क्योंकि हम शायद उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे कि जल्दी से सब खत्म हो जाए और सबको मुक्ति मिले। तो वही बात है, बाबा ने कहा इतना विस्तार है तो सार को छिपा लिया है, समझा अब क्या करना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं लेकिन दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए इसकी आवश्यकता है, समझा। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी याद आई बुद्धा के लाइफ की, बुद्धिज्म में कहानी आती है कि उनको एक बार वो जा रहे थे कहीं पे जो है बुद्ध, तो उन्होंने एक बाग बगीचा देखा तो वहां पे बैठ के वो तपस्या करने लग गए। तो वहां पे 30 कपल्स थे, वो ऐसे खेल कर रहे थे कुछ ऐसे ही। तो क्या हुआ कि एक चोर आया और उनका कुछ सामान लूट के ले गया वो, तो सारे भाग भाग के आए और बुद्धा के पास आके बोला कि आपने देखा चोर को, चोर ढूंढना है हमें। तो बुद्धा ने कहा चोर को ढूंढना है कि खुद की खोज करनी है, चोर को खोजना है कि खुद की खोज करनी है। तो सबको कहा नहीं 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 खुद की खोज करनी है हमें। तो जिस राइटर ने लिखा था उसने नीचे लिखा कि अगर आज के दुनिया में कोई किससे पूछे कि बताओ खुद की खोज करनी है कि चोर की, तो कहेंगे नहीं नहीं पहले चोर की कर लेंगे उसके बाद देखेंगे खुद की। तो फिर आगे उसने कहा कि ये तो बुद्धा के जो वाइब्रेशंस थे वो काम कर रहे थे कि सब पिघल गए। तो भी बाबा का अर्थ है कि दिल तक पहुंचे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी लेकिन वाइब्रेशंस हो साथ में, इन्फॉर्मेशन विद वाइब्रेशन, राइट वाइब्रेशन। तो भी बाबा का अर्थ है कि दिल तक पहुंचे तभी बदलाव आ सकता है। ओम शांति। हंसी क्यों आती? कई बातों के कारण आती होगी, मतलब एक तो बहुत सिंपल लोग हैं भारत के इसीलिए, और नहीं बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपलिसिटी वाले हैं। तो जैसे लेकिन जो हंसी उड़ाते हैं ना ऐसे हंसी मजाक, तो उनके कहीं ना कहीं पीछे हल्की सी रिस्पेक्ट की भी मुझे भावना आती है कि नहीं इनको रिस्पेक्ट तो है। जैसे कि अगर 10 लोग होंगे, एक पाकिस्तानी, एक अफगानी, एक बांग्लादेशी, एक श्रीलंकन, एक दिस दैट, तो कहेंगे नहीं इंडिया वाला चाहिए हमें, ये तो पक्का है। लेकिन कभी भी ना इंडियंस का और کویتیز کا پروگرام ساتھ میں نہیں رکھ سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں آنا. تو بہت ایسا ایگو کی بات آتی ہے, بہت ہے. تو وہ تو شروعات میں نے پچھلے 3 سال بہت فیس کیا, لڑائیاں بھی کی 2-4, لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ بھی ایک اٹیچمنٹ ہے, میرا بھارت مہان. تو اس سے میں نے خود کو ڈیٹیچ کیا تھوڑا بہت, لیکن کہیں نہ کہیں ایک سمپلسٹی جیسے ہوتے نا کہ جیسے کوئی دکھے گا کوئی چوٹی ووٹی باندھ رکھی, ہاں تو انڈین ہوگی نا, وہ تو بہت میک اپ اور ایکسٹریملی کیا کہیں الگ طرح کے کپڑے اور اس طرح سے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے ہنسی اڑاتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کو پتا ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. جیسے کہیں جائیں گے ہاسپٹلس میں تو ڈھونڈیں گے انڈین ڈاکٹرز کہاں ہیں, باقی نہیں چاہیے کوئی بھی. ہاں ہاں ریسپیکٹ کریں گے پر تھوڑی ہنسی اڑا کے. لیکن سیوائیں بس الگ الگ پرکار سے, جیسے تھوڑی سی کیا کہیں گے الگ پرکار کا مطلب ہے کہ ان کو اس طرح سے چلو بھی بیٹھو چلو 7 ڈیز کورس کرو, ایسے نہیں, لیکن ایک کورس کروانے کے لیے 7 دن کا جو ہم بولتے ہیں کورس کروانے کے لیے 3 لیولز میں جیسے بانٹ کے رکھا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے انٹروڈکٹری لیول, بس 5-6 کلاسز اس میں ہوتی ہیں, اس میں آتما پرماتما اور کرموں کا اور اشت شکتیاں, یہ 4 باتیں ان کو. تو وہ 20 لوگ مان لو ایک ایگزامپل ہے, اگر 20 لوگ آتے ہیں تو ان کو بہت ہی مطلب پرماتما کے لیسن میں تو اور ہی پرابلم ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی کہیں آخر تک 20 میں سے 5 لوگ پہنچتے ہوں گے. اب 5 میں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کس کا انٹرسٹ ہے, پھر پوچھتے ہیں کہ چلو آگے بھی ہے کچھ کورس اگر آپ کرنا چاہتے ہو, تو 5 میں سے سبھی کہیں ہاں جی کرنا ہے, تو اس میں سے 3 پہنچیں گے. تو اس میں سرشٹی چکر کا تھوڑا سا, کیونکہ وہاں پہ پنرجنم کی تو بات ہی نہیں کر سکتے, لیکن وہ 3 لوگ جو پہنچیں گے یس اس کا مطلب ان کو ہے تھوڑا سا انٹرسٹ, تو ان کو تھوڑا بتاتے ہیں. پھر برہما بابا تو اچھا 2 سال تک بھی نہیں بتاتے کئی بار. برہما میں کئی بار سوچتی ہوں کہ بابا جس کو پرتیکش کرنا ہے اسے کو چھپاتے رہتے ہیں وہاں پہ, جیسے بابا کا کمرے پہ لگا ہوا ایک نمبر لاک, کوئی کھول ہی نہیں سکتا اس کو, اور بابا کا کمرہ ہے بیسمنٹ میں جا کے چھپا ہوا. تو شام کو خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے, جیسے جب لوگ پبلک کا ٹائم ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے, تو اسپیشلی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ بھاگ بھاگ کے جا کے اگر کوئی آ گیا, اگر کوئی جا رہا ہے اور ہم پیچھے سے بھاگ بھاگ کے تیز جا کے بند کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ برہما بابا وہیں پہ رہے پورے اپنے سینٹر پہ, بس وہیں پہ باقی کہیں نہیں. دیکھ لیا تو کہیں گے بھیا یہ کیا ہے, ایک آدھے نے دیکھا بھی ہے, پھر ہم کہتے نہیں یہ نا وہ پتا نہیں کیا کچھ بھی بول دیتے ہیں اس سمے, ہم پینٹنگ چل دیکھ لیتے ہیں تو تھوڑا سا نا اس حساب سے وہ سوچتے ہندوئزم اور اس طرح سے, جیسے سینٹر پہ جاتے ہیں تو سامنے شیو بابا لگے ہیں اور سائڈ میں کچھ چتر ہیں, تو وہ ہیں سارے بڑے سٹل سوکشم سے جیسے اینجلس کے اور اس طرح سے, اس کے لیے بھی آبجیکشن ہوتا ہے ان لوگوں کو, وہ کہتے ہیں یہ بدھزم ہے کیا, ایک تو ایسے بھاگ گئی تھی دیکھ کے بھاگ گئی. پھر دوسری ایک آئی جس سے کورس کروا رہی تھی میں, جب پرماتما کا لیسن آتا ہے نا تو ایکسٹرا ہی وہ شروع ہو جاتی ہے ٹینشن تھوڑی کہ کیسے ان کو کیا, کیونکہ پرماتما کے لیسن میں وہ مانتے ہیں کہ اللہ اکبر اوکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن وہ کسی کا پتا نہیں, کوئی اس کا بچہ نہیں, تو ہم تو وہی بتاتے ہیں. اب شیو بابا شیو شبد تو بول ہی نہیں سکتے, اب بولیں کیا پھر, سپریم ڈیوائن لائٹ. اور پھر دھیرے دھیرے جب بابا شبد بولتے ہیں نا مجھے, میں بابا کو بولتی ہوں بابا بابا تو میں بولوں گی ہاں ابھی آگے دیکھ لینا آپ خود ہی. پھر جب ہم بابا بولتے ہیں نا, کیونکہ عربی بھاشا میں بابا مطلب فادر, ہاں تو بہت لوگوں نے کہا ہاں اچھا لگ رہا ہے سن کے. پھر ایک بولتی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کھڑی ہو گئی لڑنے لگ گئی میں جا رہی ہوں بھاگ گئی. لیکن پھر 2 مہینے بعد ملی تو خوشی خوشی, لیکن اس طرح سے بہت کیسز ہوتے ہیں. تو بہت اپنے آپ کو مینٹلی پریپئر کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, کوئی بھی کھڑا ہو کے لڑائی کر سکتا ہے. اور لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں ایک چیز آئی ہے بدلاؤ, جیسے بابا کہتے ہیں ہڈیاں نرم, تو تھوڑی تھوڑی ہڈیاں نرم ہو رہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں جیسے ایک آئی کچھ سمے پہلے کوئی تھی, کہتی ہے کہ मुझे जानना है, सीखना है, मुझे पता है कि भारत के पास ही ज्ञान है। आई और पूरा उसका ब्लैक जो बुरका पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं अबाया बोलते हैं, पूरा पहना हुआ। फिर कहती है कि मैंने आत्मा का बताया उसको, क्योंकि आत्मा वाला सबसे सेफ लेसन है, बताते रहो, कितना बताते रहो, बहुत अच्छा लगता है। फिर कहती है कितना अच्छा लग रहा है सुन के, ये हमारे कुरान में आत्मा का क्यों नहीं, क्योंकि आत्मा का भी ज्यादा जिक्र नहीं है। रूह का कुछ नाम तो होगा बट कुछ नहीं, आत्मा नहीं, पुनर्जन्म नहीं, कुछ नहीं। फिर कहती है फिर मैं अंदर से बहुत कॉन्शियस थी कि इसको कुछ पुनर्जन्म ये ना बता दूं। फिर खुद ही कहती है लगता है पिछले जन्म में ना मैं भारत में थी। मैंने कहा वाह, तो आसान है। फिर मैंने और भी सुनाना शुरू किया उसको। फिर उसके बाद सृष्टि चक्र तक ले आई मैं उसको, आगे धीरे धीरे उसने कोर्स किया। फिर कहती है ना ब्लैक मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा आप दूसरे कलर का पहन के आना, कल चेंज होगी, दूसरे कलर का पहन के। तो ऐसे अलग अलग तरह से लोग आते रहते हैं, अलग अलग, जैसे कहा ना कैसे सेवाएं होती हैं, तो अलग अलग सेमिनार्स के थ्रू कि बस जैसे वही ज्ञान लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से या लाइट तरीके से, या फिर और अलग अलग जैसे बाबा कहते हैं उनको जिस हिसाब से चाहिए। तो जैसे एक ऑर्गेनाइज करेंगे उनके लिए डिनर है, चलो डिनर पार्टी में आओ, हाँ तो आएंगे उनको थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे हल्का फुल्का ऐसे ही। तो इस तरह से
आप लोग पकड़ रहे थे?
नहीं नहीं नहीं,
तो
पुलिस पकड़ ली। नहीं, बैज बैज के बैज तो इधर ही आगे खुलता है, बैज और ये साड़ी नहीं, नॉर्मल जनरल जैसे एक न्यूट्रल कपड़े पहनने पड़ते। भारतीय आप सलवार कमीज पहन के चलो, इंडियन तो भी भाग जाएंगे। तो शुरुआत में तो मैं बड़ी खुशी खुशी पहन के घूमती रहती थी, तो हमारी दीदी बोलती ये नहीं चलेगा इधर। बुरका पहनते जब मॉस्क में जाते, उसमें अलाउड नहीं है, मॉस्क में, मॉस्क में,
मॉस्क
में न न बिल्कुल। तो वहाँ पे चोरी सर्विस हो
जाती।
हाँ जी हाँ जी, यस यस, क्योंकि देखो वो एक विजिटर है तो उनके लिए चलता है, वो तो दो दिन है, तीन दिन है, चले उनको लोग स्वीकार कर लेते हैं। पर हम तो रोज मिलना जुलना होता है, वो लोग देखेंगे अरे ये तो कुछ अलग लोग हैं, भागो यहाँ से, ये नहीं चाहिए हमें। तो उस तरीके से वो एक्सपीरियंस है, मतलब 15 साल का जो लोग वहाँ रहते हैं,
को भी देखते तो इसका,
मतलब उनको ना कहीं ये है कि हाँ ये कोई संस्था है बट ये नॉर्मल लोग हैं, ये कोई ऐसे नहीं है जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता या जो अलग हैं या फिर ऐसा बना नहीं जा सकता। इस तरह से वही बात है कि जो एक ये जो इस तरह की जो हमारी ड्रेस है वो एक हमें ना एक कल्ट के रूप में कि अलग लोग हैं, ऐसे मिलके चलना पड़ता है तभी वो आते। और वहां जाके मुझे कई बार तो शौक पे शौक लगता रहता था, कोई वहां पे किसी को बहन नहीं बोल रहा है नाम से सीधा, हमारी दीदी जिसको मैं दीदी और इतना रिस्पेक्ट, और वो कहते अरुणा, मैंने कहा ये क्या, मुझे बहुत शुरुआत में शौक लगते थे, अभी तो सारे शौक बंद हो गए। तो क्योंकि अभी आदत पड़ गई सब देखने की, डिटैच्ड अभी। तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जैसे कोई बहनें आती हैं तो मतलब वो आपको इस तरह से ट्रीट करती हैं, बहुत एज ए फ्रेंड या इस तरह से, तो मतलब वहाँ पे एज ए टीचर और स्टूडेंट वाला वो रिश्ता उस टाइप से नहीं, वो कहेंगे ये क्या है बहुत, और क्योंकि वहाँ पे पैसा ज्यादा है और उस तरीके से लाइफस्टाइल ऐसा है तो बहुत अहंकार है, एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम लेवल। तो जैसे एक भाई सुना रहा था कि मैं दुबई गया तो मैंने देखा कोई हंस नहीं रहा है वहाँ पे, मैंने कहा कुएत आओ फिर समझ में आएगा और ही। तो अभी क्योंकि दुबई में बोलते हैं 90% लोग एक्सपैट्स हैं, मतलब दूसरे देशों से आए हुए वहाँ पे, अफगानी इंडियन रिश्ते, लेकिन कुवैत में तो 10 लाख लोग हैं कुवैती और 20 लाख लोग बाहर से हैं, लेकिन फिर भी अरब कंट्रीज के हैं बहुत ज्यादा, इजिप्शियन और लेबनीज और पाकिस्तानी इस तरह से, वेस्टर्न कंट्रीज से भी है, इंग्लिश, अमेरिकन, स्पेनिश। तो अपनी जो क्लास आती है वो पूरी इंटरनेशनल क्लास होती है, बहुत अलग अलग देशों की, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्लास आती है वो सारे ज्ञान में चलने वाले हैं, और ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान में जो हम कहेंगे अरब लोग जो चलते हैं, चल पड़े हैं ज्ञान में, वो 4-5 होंगे बस, ज्यादा नहीं। पर कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा है। कम से कम 15 सिर्फ ऐसे लोग होंगे जिनको हमने सब बता दिया, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं और ये ज्ञान है, ये भगवान आए हैं, ये तो बता दिया है, वो स्वीकार करते हैं, लेकिन धारणाओं पर कहते हैं जब अंदर से आएगा ना तो चलेंगे। वो अंदर से पता नहीं कब आएगा, बट वो हिम्मत से नहीं होती है उनमें। जैसे अभी भी जो आईपीआईपी में कई आए थे तो उनको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुरली में भी आते हैं हफ्ते में 2 बार जरूर, लेकिन धारणाएं नहीं है, हिम्मत नहीं। हाँ भाई, तो मैंने कहा ना उम्मीद की बात ही मैं कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा हक से, जैसे ना अभी तो उनके साथ दोस्ती होगी तो बोलती नहीं अब नहीं खाना आपको। हाँ कहते नहीं, जब ना अंदर से आएगा ना, मैंने कहा संगम युग चला जाएगा जब तक अंदर से नहीं आएगा, फिर आप क्या करोगे। फिर एक दो एग्जाम्पल्स भी देते रहते हैं उनको, जैसे एक भाई अपना बंगाली आता था तो वो उनको जैसे कोर्स करवाया तो बताया नॉन वेज टेस्टर, तो नॉर्मल से बता देते हैं इंडियंस को, तो वो कहता है कि एक हफ्ते बाद वापस आया, वो कहता है कि मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा कैसे, तो कहता है मैं दुबई गया, मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए फिश ये वो बहुत सब बनाया हुआ था। मैंने कहा भाई नहीं, आज ही मैं कोर्स करके आया हूँ कुवैत में, आज से बंद। तो कहता तेरे लिए तो बनाया है, तुझे तो पसंद है। कहते नहीं, तो उसने बहुत अच्छा लॉजिक दिया कि मुझे पता है कि फिश मेरी कमजोरी है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, उसको मैं धीरे धीरे नहीं छोड़ सकता, चलो थोड़ा सा एकदम छोड़ूंगा तो छोड़ सकता हूँ। तो अब दूसरे लोग जो है ये कुवैती या लेबनीज जो कहते हैं धीरे धीरे और बाद में, वो नहीं हो सकता है, वो तो एकदम छोड़ना पड़ता है कि थोड़ा कम कर दें। और स्टूडेंट्स जो आते हैं, जैसे फ्राइडे को वहाँ पे संडे होता है ना, तो फ्राइडे के दिन आते होंगे 55 तक, 60 तक आ जाते हैं। जब कोई गेस्ट आते हैं तो 60 तक जरूर आ जाते हैं। बाकी जो ऐसे आने वाले जो हैं वो होंगे जो मुरली क्लास में भी पहुंच जाते हैं, 10 होंगे अरब लोग बस, ज्यादा तो नहीं। नहीं, इंग्लिश में मुरली होती है, और जो अरबी लोग जो इंग्लिश समझते हैं वो कहते हैं नहीं इंग्लिश में ही हमें सुनना है, क्योंकि अरबी में भी उनके लिए कोर्स चलते हैं, एक दो बहनें हैं जो ज्ञान में वो करवाती हैं, बट वो कहते हैं नहीं 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 हमें ना इंग्लिश में सुनना है, क्योंकि ये ज्ञान हमें पता है हिंदी में है, उसका ट्रांसलेशन हुआ हिंदी इंग्लिश, फिर और ट्रांसलेशन अरबी, सॉरी उसका लेवल घटता चला गया। तो इसलिए लिखा नहीं, इंग्लिश में ठीक है। और इस तरह से तो बाकी वही बात है कि
मुरली कब करते हैं या जैसे मुरली डायरेक्ट वैसे सुनाते हैं?
नहीं नहीं, जो मुरली क्लास में जो आते हैं उनके लिए तो हम सब कुछ सुना देते हैं, लेकिन लेकिन जो अलग से जैसे कई बैचेस बने हुए हैं, कम से कम 5 बैच ऐसे होंगे जो मैंने बताया ना बिना धारणा वाले हैं, बट मुरली सुनना अच्छा लगता है। तो 3 साल से कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे कुछ शाम को कुछ सुबह 8 से 9 ऐसे फिक्स है कुछ टाइमिंग्स कुछ बैचेस, तो उनको हम पूरी मुरली में 5 लाइनें सुनाती हूँ बस, मैं बाकी फिर डिस्कशन, बस उनको वही पसंद है, हैवी डोज वो नहीं ले सकते। बस इधर उधर की बातें 2-4 करेंगे फिर, लेकिन घुमा फिरा के मुरली में लेके आते हैं, पर बस वही थोड़ा बहुत लेके जाते हैं, बट ये तो बात स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि ये ज्ञान जो है ना है तो कुछ अलग, बस कितना अलग है कहाँ तक वो आगे नहीं पहुंच पाते। इसलिए दीदी हमेशा कहती है एक भी अरबी को ज्ञान में निकालना मतलब भाई ना भगवान ही कर सकते हैं किसी इंसान की तो बस की बात। तो ये जो वजिया बहन के जाने के बाद जो 2 बहनें ज्ञान में चली हैं, जाने के बाद मतलब उसके सामने ही मोना और शेखा हैं, तो वो जो है मेनली पूरा जैसे हमारे वीजा वगैरह जो बनवाने हैं, क्योंकि एक कुवैती का स्पॉन्सर चाहिए जो बनवाए आपका वीजा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जब मैं वहां पर गई तो मेरा 2 बार वीजा रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि बहुत मुश्किल है, कोई एंट्री नहीं करने देते, देखते हैं उम्र कम है, अब 40 के नीचे हो फीमेल हो तो रिजेक्ट होना ही है, एक बार पक्का होना है। मतलब उनको बहुत इनसिक्योरिटी भी है कि आएगा अगर कोई आ जाएगा यहाँ पे, किसी कुवैती से शादी कर लेगी तो कुवैती किसी को नेशनैलिटी मिल जाएगी और हमारे रिसोर्सेज वो हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे इतना अमीर देश है ना, तो जो कुवैती लोगों के लिए बहुत फैसिलिटीज हैं, मतलब अगर कोई विदेश में पढ़ने जाता है ना गवर्नमेंट देती है उसका खर्चा, कोई बीमार हो गया उसको अमेरिका जाना है इलाज करवाने गवर्नमेंट देती है सारा खर्चा, जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार होता है ना उस तरह से उनकी हालत, बहुत पैसा ज्यादा है लोग कम है, तो हर महीने उनको जो राशन मिलता है जो अपने यहाँ पे होता है ना, जो चावल बासमती जो बेस्ट, वो उनको फ्री में हर महीने मिलता है। जैसे केक दिनार में, एक दिनार का मतलब होता है 200 रुपए में, मतलब कम से कम 20-30 किलो हर महीने चावल और दूध और तेल और ये सब चीजें फ्री में। गुड क्वेश्चन। भंडारी सिस्टम एक बड़ा सुंदर सा बॉक्स हमने रख रखा है, थोड़ा सा अंदर जाके, क्लासरूम में तो कोई दिखता नहीं, वो थोड़ा सा अंदर जाके, वो भी बहुत क्लोज जो लोग होते हैं वही पूछते हैं कि भाई हमें कुछ, मतलब दो बिल्कुल जैसे कहते हैं 50-50 टाइप के लोग हैं, 50% ऐसे जो बिल्कुल बस लेने के लिए आते हैं, ले लो जितना लूट सकते हो निकल जाओ। कुछ लोग होते हैं अरबी लोगों में बहुत दान पुण्य का भी, जैसे रमादान बोलते हैं, रमजान जो हम यहाँ पे बोलते हैं वो रमादान बोलते हैं, जहाँ दान करते हैं, तो देने का भी प्रवृत्ति है उनमें। तो कई लोग आते हैं कि हमें कुछ ना देना है, कैसे दे सकते हैं, हम कहते हैं वहां पे एक बॉक्स है, तो फिर कुछ लोगों को पता है पर ज्यादा नहीं। तकलीफ ऐसे तो नहीं, हाँ तकलीफ अलग अलग प्रकार की होती है, हाँ अलग अलग प्रकार की तकलीफें हैं, जैसे कि अलग अलग देश में रूल्स बनते रहते हैं कि अगर आप जा रहे हो, एक बार रूल बना था, कई लाख लोगों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया था, डिपोर्ट मतलब उस देश के बाहर निकाल दिया। जैसे किसी के पास एक सिविल आईडी होता है वहां पे, एक जैसे आइडेंटिटी कार्ड, वो लेकर ही आप बाहर निकल सकते हो, अगर वो नहीं है पुलिस आपको पकड़ ले तो ये कोई मजाक की बात नहीं, आपको एकदम सीधा पुलिस स्टेशन और वहां से आपके देश में। फिर कई लोगों का तो ऐसा हुआ था, कोई लोग नीचे अपनी बिल्डिंग से नीचे गए हैं सब्जी खरीदने और फिर इंडिया जाके फोन कर रहे हैं, हेलो हम पहुंच गए हैं, वो लोग अरे सब्जी लेने गए थे, भारत से फोन कर रहे हैं। उस समय ऐसा बहुत लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया, उनको उनको लग रहा था कि बस अभी हमें एक्स्ट्रा लोग नहीं चाहिए। हाँ जी। नहीं नहीं, टिकट के पैसे फिर इंडियन एम्बेसी से लेंगे कि तुम्हारे लोगों को हमने भेजा पैसे दो। ऐसे टेम्परेचर तो 50 डिग्री रहता है, लेकिन अभी मैंने देखा कल चेक किया तो यहां से भी कम है, वहां पे रेगिस्तान है ना, थोड़ा कम भी ऐसे हो जाता है, लेकिन हाँ योग के पावर से। लेकिन हाँ हाँ एसी, मतलब आप सोच सकते हो कि बाथरूम्स और किचन सब जगह एसी, एसी के बिना, मतलब एसी कोई लग्जरी नहीं है वहां पर कि बस ऐशो आराम के लिए, वो एक जरूरत है वहां पर, जरूरत है वो, लेकिन उसका बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है शरीर कि आपको ताजी हवा की कोई नामा निशान नहीं है अब दर, क्योंकि वहां पे समुद्री क्या कहते रेतीले तूफान आते हैं ना, तो इसलिए घर भी ऐसे बने हुए हैं बिल्कुल पैक्ड। कोई खिड़की विड़की, ऑफकोर्स खिड़कियां हैं खोल सकते हैं, बट वो कभी खोली नहीं जाती है क्योंकि खोलोगे तो पूरी रेत की लेयर मिलेगी मोटी मोटी। बिना बुलाए मेहमान की तरह अंदर आ जाएगी। तो इसीलिए बस घर से निकलो, कार में बैठो तो एसी है। अब शॉपिंग करने के लिए ऐसा तो नहीं कि सब्जी की मार्केट है चलो जैसे लगी होती है, नहीं आप मॉल में ही जाओगे वो भी एसी है, तो फिर वहां पे भी इसीलिए। अब जैसे ही मैं प्लेन से उतर रही थी ना, लंबे लंबे मैंने सांस लेने शुरू किए, आखिर सांस लेने का मौका मिला। हाँ सब्जी, सब्जी में एक खासियत है कि वहां पे इस तरह से बहुत फायदा है, जो सब्जियां सच में यहाँ नहीं मिलती वो वहां पे मिलती हैं और ताजी मिलती हैं। भारत की सब्जी जैसे, क्योंकि इतने लाख, कितने 10 लाख अगर कुवैती हैं तो 9 लाख के करीब इंडियंस हैं वहां पे, तो इतने लोगों के लिए बहुत सारे प्लेन भारत से जाते हैं, गुजरात से खासकर बहुत सारे सब्जियां जाती हैं तो ताजी मिलती है वहां पे। इंडियन एरिया है वहां पे जिसको पूरा वो लोग बॉम्बे ऐसे कुछ बोलते हैं, वो सब इंडियंस तो कभी अपना नाम लगा देते हैं ना, ये चांदनी चौक है और ये है, तो वहां पे बहुत सब्जियां मिलती हैं तो इंडियन सेंटर पे लेके आते हैं। लेकिन दूसरा एक फायदा है, जैसे बताया ना मैंने, बहुत एक्सपैट्स वहां पे रहते हैं जो दूसरे देशों के, यूरोपियन और इंग्लिश और इस तरह के लोग, तो वहां पे अगर आप टमाटर खरीदने जाते हैं ना तो यहाँ पे लिखा होगा लेबनीज टमाटर, सऊदी टमाटर, वहाँ का टमाटर, वहाँ का टमाटर कौन सा लेना है ले लो भाई, इंडियन टमाटर। इंडियन सब्जी का तो क्या अलग ही रहती है एक एरिया, नहीं सब्जियों की तो कोई वो नहीं है दिक्कत, बहुत ताजा और वैरायटी, सस्ते सस्ते नहीं बहुत महंगी, बहुत महंगी क्योंकि वहाँ थोड़ी कुछ उगता है वहाँ तो, हाँ खजूर उगते हैं वहाँ पे बहुत जबरदस्त, क्योंकि जैसे नेचर का एक बैलेंस है ना कि वहाँ पे कुछ और नहीं है तो खजूर जो इतनी अच्छी डाइट मानी जाती है कि आप चार खजूर खा लो तो बहुत न्यूट्रिशन आपको मिल जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी मिलते हैं। ठीक है ओम शांति।